बाहर मौसम तेजी से खराब हो रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क राहत के बजाय और ज्यादा डरा रही थी। ये आवाज आस्तिक को और घबराने पर मजबूर कर रही थी। उसने जल्दी से अरुणिमा के गले लगकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरुणिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक आराम से, कुछ नहीं हुआ है, बस मौसम खराब है, लेकिन तुम यहां सुरक्षित हो, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जाओ। थोड़ी देर आस्तिक अपनी आंखें बंद किए अरुणिमा को अपने सीने से लगाए रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसने अरुणिमा को झटके से छोड़ दिया और उससे अलग हो गया। अरुणिमा हैरान होकर उसे देखने लगी। आस्तिक ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे सिंपथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरुणिमा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हो आस्तिक, मैं तुम्हें कोई सिंपथी नहीं दिखा रही हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हमारा रिश्ता है, इसीलिए फिक्र है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर आस्तिक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बीवी हो मेरी, सच में ऐसा लगता है, और तुम इस बात को मानती भी हो, जबकि मैंने तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं माना है, किस हक से तुम खुद को मेरी बीवी का दर्जा दे रही हो। अरुणिमा के चेहरे पर दर्द छा गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने अपनी उदासी भरी आवाज में कहा, हाँ जानती हूं कि तुमने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं माना है और ना कभी कोई हक दिया है, इसलिए कोई हक नहीं है मुझे ये कहने का, पर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ क्या किया है मैंने, क्या गलती है मेरी और किस बात की मुझे सजा मिल रही है। तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करना मेरा फैसला था। अगर तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम पहले ही शादी से पीछे हट सकते थे, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी। उस वक्त तुम्हें सिर्फ शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी, और वो लड़की चाहे कोई भी हो, तुम उससे शादी कर लेते और उसका भी वही हाल करते जो मेरा किया है। आस्तिक की नजरें तीखी हो गईं और वो गुस्से में अरुणिमा को घूरने लगा। लेकिन अरुणिमा अब चुप नहीं रहना चाहती थी। अगर उन दोनों के बीच बात हो ही रही है तो सारी बातें खुलकर सामने आ ही जाएं तो बेहतर है। अरुणिमा और घुट घुट के नहीं रह सकती थी। वैसे भी ये दर्द, ये तकलीफ उसे रोज एक नई मौत मारता था, इसलिए वो आस्तिक से और सारी बातें साफ कर लेना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है कि आस्तिक उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसकी गलती क्या है, उसने क्या किया है। अरुणिमा रोते हुए बोली, बताओ आस्तिक, क्यों तुमने मुझसे शादी की जब तुम खुद इस रिश्ते को नहीं अपनाना चाहते थे? सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए जो तुम्हारे पिता तुम्हें देना चाहते थे, है ना? यही वजह है ना? तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी की थी और फिर मुझे अपने घर में एक सामान की तरह रख दिया, दुनिया वालों के सामने मुझे एक नमूने की तरह पेश किया और उसके बाद फिर से सजाकर शोकेस में रख दिया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिखावे का सामान थी, इसके अलावा तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। पहले तुमने मेरे होने का फायदा उठाया और फिर तुमने मेरे शरीर का फायदा उठाया, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी से ऑब्सेशन हो गया और उसके बाद तुमने मुझे एक और नया दर्द देना शुरू कर दिया। आस्तिक के हाथ गुस्से से कस गए थे। उसने गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहा, ये बकवास बंद करो, तुम तो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो जैसे सारी गलती मेरी है और तुम बहुत दूध की धुली हो। सच बताना, तुम भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी ना, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो अपनी पोजीशन चाहिए थी जिसके लिए मुझे किसी भी लड़की से शादी करना मंजूर था, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अपने पापा का बिजनेस बचाने के लिए, तुम्हें भी तो उस वक्त मेरी जरूरत थी, तुमने भी तो अपने पापा के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए मुझसे शादी की, ताकि मेरे सहारे तुम अपने पापा को बर्बाद होने से बचा लो, इस्तेमाल तो तुमने भी किया है ना मेरा। अरुणिमा की आंखों से आंसू तेज हो गए। उसने धीरे से अपना चेहरा हिलाते हुए कहा, हाँ उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, उस वक्त मुझे सिर्फ उनका कर्ज चुकाना था और उनके कर्ज की कीमत मैंने अपनी जिंदगी लगा दी। अगर मुझे एक और मौका मिले ना तो मैं उस दिन को बदलना चाहूंगी जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था जिसके लिए मैं आज तक पछता रही हूँ। और ये बात मैं शादी से पहले से जानती थी कि तुमसे शादी करने के बाद मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, पर फिर भी मैंने तुमसे शादी की और पूरी कोशिश की इस शादी को निभाने की, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है जो सिर्फ मैं निभाना चाहती हूँ, और वो भी सिर्फ अपने पापा के लिए। मैं तुमसे शादी सिर्फ अपने पापा की वजह से की है और मैं इस रिश्ते में भी सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे अपने पापा का कर्ज उतारना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस बेमायने के रिश्ते को भी निभा रही हूँ। हाँ जानता हूँ, अपने पापा की कंपनी का कर्ज उतारने के लिए तो तुमने मुझसे शादी की है, यही बात है ना? आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहा। अरुणिमा की आंखों के आंसू उसके गालों पर आ गए और उसने दर्द से भरकर कहा, नहीं, बल्कि उनकी बेटी होने का कर्ज चुकाना है मुझे। आस्तिक हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अरुणिमा क्या कह रही है। उसने हैरानी से पूछा, बेटी होने का कर्ज? मतलब? मैं समझा नहीं। अरुणिमा धीरे से अपनी पलकी उठाकर आस्तिक को देखते हुए बोली, मुझे उनकी बेटी होने का कर्ज चुकाना है और उसकी कीमत मेरी जिंदगी है। तुम्हारे साथ ये रिश्ता अगर यही कीमत है उनकी बेटी होने की, तो मैं ऐसी 100 जिंदगियां अपने पापा पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन बदले में ऊपर वाले से बस एक ही दुआ मांगूंगी कि अगले जन्म मुझे उनकी अपनी बेटी बनाकर भेजना, उनकी गोदली हुई बेटी नहीं। आस्तिक का चेहरा एकदम से हैरानी से भर गया और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोला, क्या वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है? तुम उनकी अडॉप्टेड बेटी हो। अरुणिमा अपने दुख को जाहिर करते हुए धीरे से हिली और बोली, हाँ, मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ और यही कर्ज मुझे सारी जिंदगी तुमसे बंद कर रखेगा। मुझे उनकी परवरिश की कीमत चुकानी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस शादी में हूँ, वरना मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना तो इस रिश्ते में रहती और ना ही तुम्हारे दिए हुए जख्मों को सहती। मैं तो शादी से पहले से ही तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। जब से मुझे ये पता चला था कि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ किया है, मैं शादी से बचना चाहती थी। यहाँ तक कि मैं ये भी सोच ली थी कि मेरे पापा मेरी शादी किसी से भी करवाएंगे तो मुझे मंजूर होगा, मुझे बस तुमसे शादी नहीं करनी थी। और फिर मुझे पता चला कि पापा की कंपनी दिवालिया होने को आई है और तुम उनके कंपनी में इन्वेस्टेशन करने वाले हो, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन इन्वेस्टर्स को ढूंढूं जो मेरे पापा की कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए मैं पापा की लाइब्रेरी गई और वहां जाकर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइलों को तलाशना शुरू किया, जिससे मुझे पापा की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स की लिस्ट मिल सके। पर उन डॉक्यूमेंट्स के बीच मुझे वो पेपर मिला जो मैं कभी नहीं पढ़ना चाहती थी, और वो था मेरे अडॉप्शन का पेपर। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था और मुझे अपनी बेटी की तरह घर में रखा। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ, और आज बदले में वो मुझे बस ये चाहते हैं कि उनकी डूबती हुई कंपनी बचाने के लिए मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैंने अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपने पापा की खुशी चाहिए थी, और अगर उनकी खुशी इसी में थी तो यही सही।
मैं जानती थी कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी नरक बना देगा, और तुमने शादी के बाद मुझे दर्द के साथ जीना सिखाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने पापा के लिए तुम्हारे हर एक दर्द को हंसते हंसते सह लिया, क्योंकि मैं अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। अरुणिमा अपने दर्द को बयां करते हुए ये सब बोल रही थी और आस्तिक बस उसे सुन रहा था। आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे से अपनी वो बातें बता रहे थे जो शायद उनके दिल के किसी कोने में बंद थीं, और ये ज़रूरी भी था। एक अच्छी शुरुआत से पहले कुछ दर्द का सामना हो जाना जरूरी भी होता है। आस्तिक के दिल में भी बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त अरुणिमा अपना दर्द उसके सामने रख रही थी। ये पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खुलकर बात कर रहे थे। अपनी पिछली तकलीफों को और अपने रिश्ते में उलझी हुई गांठों को वो दोनों एक दूसरे के सामने रख रहे थे। गलतियां और गलतफहमियां दूर हो जाएं तो रिश्ता सुधर ही जाता है।